ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अध्याय 6, आबू की लड़ाई। हालांकि क्षत्रियों के धर्म के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के साथ किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं किया था, फिर भी हार जाने के कारण शहाबुद्दीन का जो अपमान हुआ था वह समय बीत जाने पर भी भूल नहीं सका। उसे केवल पृथ्वीराज से बदला लेने की धुन सवार थी। इसीलिए एक दिन जब उसने सुना कि पृथ्वीराज लट्टू वन में शिकार खेलने को गए हैं, तब उसने उस स्थान पर आक्रमण कर दिया, परंतु वहां दूसरी बार भी उसको हार मिली। हमेशा से भारत की रक्षा का भार क्षत्रिय जाति पर था। जिस समय की बातें हम लिख रहे हैं उस समय भी क्षत्रिय जाति ही भारत की रक्षक थी। गुजरात का राजा भोला राय भीमदेव वास्तव में बहुत पराक्रमी राजा था। उसने अपने राज्य का शासन इतनी अच्छी तरह से किया था कि उस समय के अच्छे अच्छे राजा उसकी धाक मानते थे। सारांश यह है कि वह बहुत प्रतापी राजा था और उसका बहुत सम्मान था। उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की सहेलियों से चंद्रवती के राजा सलक की कन्या इच्छन कुमारी के रूप गुण की बहुत प्रशंसा सुनी और वह उस पर ऐसा आसक्त हुआ कि अपना राजकाज भूल गया। उसने राजा सलक को अपनी कन्या देने के लिए पत्र लिखा। उसका ये पत्र इतने घमंड से भरे शब्दों में लिखा गया था कि राजा सलक ने उसे अपमानजनक समझा। फिर भी राजा सलक ने नम्र शब्दों में उस प्रधान को जो पत्र लेकर गया था यह उत्तर दिया कि मैं इच्छन कुमारी का विवाह पृथ्वीराज से करने का वचन दे चुका हूँ, इसीलिए भीमदेव को इस बारे में अब जिद नहीं करनी चाहिए। इस पर उस प्रधान ने भीमदेव का कुछ पक्ष लिया। सारांश यह कि बात ही बात में बात बढ़ गई। राजा सलक ने भी बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो भीमदेव के लिए अपमान सूचक थीं। राजा सलक ने अपने पुत्र जैतसी से भी इस बारे में सलाह ली। उसकी भी यही सलाह थी कि जब पृथ्वीराज से इच्छन कुमारी का विवाह होना निश्चित हो चुका है तब उसे बदलने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, भीमदेव का प्रधान राजा सलक को बहुत डरा धमका कर चला गया। उसके जाते ही राजा सलक ने सारा समाचार सोमेश्वर जी को लिख दिया। उसमें भीमदेव के मंत्री अमर सिंह से जो बातें हुई थी वे भी लिख दी। साथ ही यह भी लिख दिया कि विवाह बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। इस समय पृथ्वीराज दिल्ली में थे। ये समाचार सुनकर वे अपनी सेना लेकर इच्छन कुमारी से विवाह करने के लिए चल दिए। जब भीमदेव को यह हाल पता चला तब वह आग बबूला हो गया। उसने भी एक पत्र लिखकर पृथ्वीराज को समझाना चाहा कि सलक मेरा शत्रु है, तुम उसका पक्ष ना लो। इधर तो उसने पृथ्वीराज को यह पत्र लिखा, उधर उसने अपने अधीनस्थ राजाओं को अपने साथ लेकर आबू पर दक्षिण की ओर से आक्रमण कर दिया। राजा सलक पहले से ही सावधान था, उसने आक्रमण को रोका। बहुत देर तक युद्ध हुआ और अंत में अपने कई सरदारों के साथ पवार सलक मारा गया और आबू पर भोला राय भीमदेव का अधिकार हो गया। आबू पर अधिकार करके भीमदेव अपने राज्य में लौट गया। इस समय वह पृथ्वीराज की बढ़ती हुई कीर्ति को देख देख कर ईर्ष्या से जल रहा था। वह नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज की उन्नति हो, इसीलिए उसने अपने राज्य पट्टनपुर में जाकर शहाबुद्दीन गौरी के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें यह लिखा था कि यदि आप सहायता देना स्वीकार करें तो मैं नागौर को घेरता हूँ, आप दिल्ली को घेरिए, एक साथ ही हम लोग अपना काम बना लेंगे। उस पत्र में उसने धन संपत्ति की ओर से अपनी अनिच्छा दिखाते हुए एकमात्र इच्छन कुमारी के लिए ही यह युद्ध करना लिखा था। उसका मकवान नामक एक सरदार पत्र लेकर मोहम्मद गौरी के पास गया था। मकवान ने गजनी जाकर मोहम्मद गौरी से मुलाकात की, परंतु पृथ्वीराज से हार जाने के कारण मोहम्मद गौरी का मिजाज ही बदल गया था। वह ना जाने क्या सोचकर उस समय भीमदेव को ही खराब बातें कहने लगा। अंत में उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं खुद पृथ्वीराज से बदला लूंगा, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं काफिर भीमदेव को भी देखूंगा कि वह कितनी ताकत रखता है। मकवान ने भीमदेव की बहुत प्रशंसा की। बातों ही बातों में बात बढ़ गई और अंत में मकवान भी वहीं मारा गया। जब यह समाचार भीमदेव के पास पहुंचा, तब उसके पश्चाताप की कोई सीमा नहीं रही। जिस लोभ के वश में होकर उसने यह अन्याय किया था, वह इच्छा भी पूरी नहीं हुई। अपमान हुआ और उसका प्रिय सरदार भी मारा गया। इस प्रकार अपने पाप का प्रायश्चित भोग कर खिसियानी बिल्ली के समान वह गजनी पर ही आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। परंतु जैसे ही वह चलने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही किले में बहुत भयानक आग लग गई और इसे अपशगुन समझकर वह अपनी हार के डर से चुपचाप बैठ गया। उस समय पृथ्वीराज नागौर में थे। उन्होंने भी ये समाचार सुना और यह भी सुना कि मोहम्मद गौरी जल्दी ही इसीलिए आक्रमण करना चाहता है। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय दो दो शत्रुओं से सामना करने का अवसर आ गया था। इस समय पृथ्वीराज के पास केवल 8,000 सैनिक थे। उन्होंने अपने नाना को लिखकर दिल्ली से 4,000 सैनिक और भी बुला लिए और इस तरह 12,000 सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करके वह चुपचाप बैठकर शत्रु का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे वह समय आ पहुंचा जब शहाबुद्दीन अपनी सेना के साथ फिर सारुंडा आ पहुंचा। पृथ्वीराज अपने सारे सामंतों को इकट्ठा करके इस बात पर विचार करने लगे कि इन दोनों शत्रुओं का किस प्रकार सामना करना चाहिए। चामुंड राय, जैत राव, देव राय, बगरी आदि सरदारों ने युद्ध के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट की। उसी समय लोहाना अजानु बाहु भी अपनी 5,000 सेना के साथ वहां आ पहुंचा। पृथ्वीराज ने अपनी सेना के दो भाग करके एक भाग का सेनापति चामुंड राय तथा कैमास को नियुक्त किया और दूसरे भाग का सेनापति वह खुद बन गया। इस तरह दोनों शत्रुओं का रास्ता रोकने के लिए सेना तैयार हो गई। कैमास और भोला राय को भीमदेव के मुकाबले के लिए उसने नागौर में छोड़ दिया और खुद अपनी सेना लेकर सारुंडा की ओर मोहम्मद गौरी से युद्ध करने के लिए चल दिए। भारत के लिए यह समय बहुत ही भयानक था। विदेशी शत्रु आक्रमण करके इस देश को लूटने की ताक में बैठे रहते थे और इस देश की रक्षक क्षत्रिय जाति अपनी विलास वासना पूरी करने के चक्कर में आपस में ही लड़ रही थी। हालांकि भोला राय भीमदेव पृथ्वीराज से युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, फिर भी उसके बहुत सारे सरदारों की यह सलाह थी कि पृथ्वीराज से संधि कर ली जाए तथा राजा सलक से भी युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु भोला राय भीमदेव ने अपने मंत्रियों की सलाह पर उस समय बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। भीमदेव का अमर सिंह नामक एक जैनी मंत्री था। रासों में लिखा है कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक था। अपने तंत्र बल से उसने भीमदेव को तो अपने वश में कर ही रखा था, साथ ही साथ इस बार के युद्ध में वह कैमास को भी अपने वश में करना चाहता था। अमर सिंह की चाल उस समय काम कर गई। उसने लाले नामक खत्री की रूपवती कन्या कैमास के पास भेजी। कैमास उस कन्या पर ऐसा मोहित हुआ कि अपने राजा तथा कर्तव्य को भूल गया, जिससे नागौर पर भीमदेव का अधिकार हो गया। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा, तब कन्ह, चामुंड राय और चंद पुंडीर आदि नागौर गए। इनके बहुत समझाने पर कैमास की मोह निद्रा टूटी। उसने अपनी तथा इन सरदारों के साथ आई हुई सेना लेकर बहुत तेजी से भीमदेव की सेना पर आक्रमण कर दिया। भीमदेव की सेना हार गई। बरदाई मत के अनुसार यह युद्ध आनंद विक्रम संवत 1144 के अष्टमी को आधी रात के समय हुआ। इसमें दोनों ओर के 16,000 सैनिक मारे गए, 13,000 भीमदेव की ओर से तथा 3,000 कैमास की ओर से। आबू पर पृथ्वीराज का अधिकार हो गया और जैतसी प्रमाद को वहां का सरदार नियुक्त किया गया।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।